नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सख्त कानून बनाने पर जोर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरा दबाव अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफान फेंगल में परिवर्तित हो सकता है। गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज संपन्न हो रहा है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेवानिवृत्त जनरल कीथ केलॉग को यूक्रेन और रूस का विशेष दूत नामित किया। और ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी में मौजूदा चैंपियन भारत ने पहले मैच में थाईलैंड पर 11-0 से एक तरफा जीत दर्ज की। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाए जाने की आवश्यकता है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन संपादकीय नियंत्रण न होने के कारण सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री का निर्बाध प्रसार हो रहा है। ओटीटी सामग्री के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म जिन देशों से आए हैं उनकी और भारत की संस्कृति में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति को इस मामले को देखना चाहिए।
आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून में बने उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की जरूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने।
श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में ओटीटी मंचों के लिए आचार संहिता बनाई है। इसमें ऐसी किसी भी सामग्री के प्रसारण की अनुमति नहीं है जो कानूनन प्रतिबंधित हो। ओटीटी के लिए ये प्रावधान भी किए गए हैं कि वे ऐसी सामग्री के प्रसारण में पर्याप्त ध्यान रखेंगे जो बच्चों के देखने के लिए उपयुक्त न हो। श्री वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष मार्च में मंत्रालय ने अश्लील और अभद्र सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को बंद करवा दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दोपहर बाद 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री सोरेन ने रांची में कहा कि उन्होंने समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
हेमंत सोरेन आज चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और RJD के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव भी समारोह के सहभागी बनेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने की संभावना है। रांची से शिल्पी के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल।
महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेगी। श्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर निर्णय लिया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरा दबाव अगले 12 घंटों में फेंगल नामक तूफान में बदल जाएगा। शनिवार सुबह कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तरी तमिलनाडु पुदुचेरी तटों को पार कर जाएगा। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने कहा है कि दबाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और 30 नवंबर की सुबह ये गहरे दबाव के रूप में कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तरी तमिलनाडु और पुदुचेरी तट को पार करेगा, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आने वाले दिनों में उत्तरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी जारी रहने के कारण तटीय जिलों में एहतियात के तौर पर शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
इस बीच बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के कम दबाव के कारण तेलंगाना में कई जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। केंद्र सरकार डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरक की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों, रेलवे और उर्वरक कंपनियों के साथ तालमेल बनाए हुए है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में 17 लाख टन से अधिक आयातित डीएपी राज्यों को उपलब्ध कराई गई है। मंत्रालय के अनुसार भू राजनीतिक कारणों से डीएपी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। तटरक्षक बल की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला आज से केरल के कोच्चि में शुरू हो रही है। 2 दिन की इस कार्यशाला का उद्घाटन रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह करेंगे। इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय समुद्री खोज तथा बचाव बोर्ड की 22वीं बैठक के साथ किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम में अब तक के सबसे बड़े रियल टाइम सिमुलेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री हितधारकों के बीच प्रभावी खोज और बचाव कार्यों तथा सहयोगात्मक प्रयासों के लिए कौशल को निखारना है। समुद्र में बड़े पैमाने पर होने वाली आकस्मिकताओं के लिए प्रतिक्रिया अभियान सारेक्स के वर्तमान संस्करण का सार होगा, जिसका विषय है क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। आज टेबल टॉप अभ्यास कार्यशाला और सेमिनार सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल कोची के तट पर 2 बड़े पैमाने की आकस्मिकताओं से संबंधित समुद्री किया जाएगा, जिसमें तटरक्षक, नौसेना, वायुसेना, कोची बंदरगाह प्राधिकरण और सीमा शुल्क के जहाज, विमान और नौकाएं भाग लेंगी। कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
सशस्त्र बलों और उद्योग के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए आज से नई दिल्ली में 2 दिन के रक्षा साझेदारी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकार और व्यापारियों के बीच तथा व्यापारिक समुदाय के बीच के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस और एशिया प्रशांत भागीदारों से 3 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपील की है। इनमें द्विपक्षीय समझौतों और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी सहयोग को मजबूत करना और सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फ्रांसीसी विदेश व्यापार आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और फ्रांस का व्यापार 15 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
इंडिया एंड फ्रांस आर सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ आवर डिप्लोमेटिक टाइज एंड 25 इयर्स ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिस ईयर। Bilateral trade between India and France in our financial year 2024 ended on March 31st reached $15 billion.
श्री गोयल ने कहा कि दोनों देश कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, एयरोस्पेस, रक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि अगले 3 दशकों में विश्व में हवाई जहाजों की सबसे बड़ी मांग भारत से ही होगी। उन्होंने 2029 तक देश में 75 नए हवाई अड्डे बनाए जाने की भी बात कही। श्री गोयल ने लड़ाकू विमानों के संयुक्त निर्माण तथा साइबर सुरक्षा, यांत्रिक बुद्धिमत्ता, ई कॉमर्स और क्वांटम प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की। श्री गोयल ने फ्रांस की विदेश व्यापार मंत्री सोफी प्राइमस के साथ भी चर्चा की। महाराष्ट्र सरकार ने माल ढुलाई करने वाली हल्की गाड़ियों के वितरकों के ऑनलाइन फेसलेस पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में उपलब्ध होगी। इसके लिए वाहन वितरकों को वेबसाइट parivahan.gov.in पर मालिकों की ओर से वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज संपन्न हो रहा है। समारोह के अंतिम दिन फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी एक सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है सिनेमा में रचनात्मक भविष्य के लिए युवाओं का सशक्तिकरण। बाद में श्री सिप्पी मोहित सोनी के साथ उत्कृष्टता के लिए जुनून विषय पर रमेश सिप्पी के साथ बातचीत करेंगे। समारोह में आज पहली बार निर्देशन करने वाले भारतीय निर्देशकों में से एक मनोहर के की फिल्म मिक्का बन्नाडा हक्की को दिखाया जाएगा। समापन फिल्म ड्राई सीजन 2 सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गोवा में आज शाम उत्साह के साथ भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। इस वर्ष महोत्सव में विभिन्न भाषाओं और विधाओं की लगभग 180 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। भारतीय सिनेमा के दिग्गजों द्वारा आयोजित मास्टर क्लास सत्र भी चर्चा का केंद्र रहे। इस वर्ष युवा फिल्म मेकर्स पर खास ध्यान दिया गया। आज जब महोत्सव अपने अंतिम चरण में है तो कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी, जिसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी शामिल है। ओमवेश उपाध्याय के साथ दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिहार की राजधानी पटना में ज्ञान भवन सभागार में आज राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इसमें 153 डाक टिकट संग्रहकर्ता करीब 20,000 डाक टिकटों का प्रदर्शन करेंगे। बिहार की डाक संस्कृति के समृद्ध इतिहास पर आधारित 3 दिन की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे। हैदराबाद मेट्रो में पिछले 7 वर्ष में 63,40,00,000 से अधिक लोगों ने यात्रा की है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में किया था। हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना 3 कॉरिडोर में चल रही है। ये रेल 69 किलोमीटर में फैले 57 स्टेशनों को जोड़ती है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेवानिवृत्त जनरल कीथ केलॉग को रूस और यूक्रेन का विशेष दूत नामित किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि जनरल कीथ यूक्रेन और रूस के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत होंगे। जनरल कीथ श्री ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पदों पर तैनात रहे हैं। एक अन्य फैसले में श्री ट्रंप ने भारतीय मूल के डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का प्रमुख नियुक्त किया है। इस बीच श्री ट्रंप द्वारा नामित कुछ अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र के दूत और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख शामिल हैं। ओमान की राजधानी मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी के पहले मैच में भारत ने कल थाईलैंड को 11-0 से हरा दिया। भारत की ओर से अरजीत सिंह हुंदल, सौरभ आनंद कुशवाहा और गुरजोत सिंह ने 2-2 गोल किए। प्रतियोगिता में आज भारत का सामना जापान से होगा। और अब खेल समाचारों के साथ हैं अभिषेक कपिल।
लखनऊ में चल रहे सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अगले दौर में पहुंच गए हैं। उनके अलावा मालविका बंसोड़, उन्नति हुड्डा, तस्नीम मीर और महिला डबल्स के अश्वनी पोनप्पा, तनिषा क्रेस्ट्रो तथा त्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग में कल बेंगलुरु FC ने मोहम्मदन SC को 2-1 से हरा दिया। आज केरला ब्लास्टर्स FC का सामना FC गोवा होगा। उधर प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स ने पुनेरी पल्टन को हरा दिया है। एक अन्य मैच में गुजरात जॉइंट्स ने बंगाल वॉरियर्स को हराया। प्रतियोगिता में आज यूपी योद्धा का सामना जयपुर पिंक पैंथर्स से और यू मुंबा का तेलुगु टाइटन से होगा।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह 6 बजे सूचकांक 304 रहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं दिव्या तोमर।
धन्यवाद देवेंद्र। महाराष्ट्र में CM पद को लेकर संशय खत्म होने को अधिकांश अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की टिप्पणी है, शिंदे बोले मुख्यमंत्री पर मोदी शाह का फैसला मंजूर। दैनिक भास्कर की टिप्पणी है, शिंदे पीछे हटे, भाजपा का CM बनने का रास्ता साफ। जनसत्ता लिखता है, एकनाथ शिंदे ने दावेदारी छोड़ी। उधर झारखंड में नई सरकार के गठन को लोकसत्य ने सुर्खी दी है, हेमंत अकेले लेंगे शपथ, मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में। संसद में सरकार और विपक्ष में तनातनी भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता लिखता है, विपक्ष का हंगामा, नहीं चली संसद। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अडानी संभल मुद्दे पर विपक्ष हमलावर, संसद फिर ठप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनेताओं के खिलाफ दर्ज हर मामला दुर्भावनापूर्ण नहीं होता। नकदी के बदले नौकरी मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत पर शीर्ष अदालत की टिप्पणी अमर उजाला में है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सख्त कानून बनाने पर जोर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरा दबाव अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफान फेंगल में परिवर्तित हो सकता है। गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज संपन्न हो रहा है। और ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी में मौजूदा चैंपियन भारत ने पहले मैच में थाईलैंड पर 11-0 से एक तरफा जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।